निमित्त निमित्त संबंध एक समय में होने वाली बातों में होता, समय एक गुण होता, इसको कहते काल प्रत्याशक्ति। काल प्रत्याशक्ति, एक ही काल में दो भिन्न द्रव्यों के अपने अपने कार्य होते हैं और हम उनकी तरफ देखते तो हमें ऐसा लगता है कि मैं इसके काल में हुआ हूँ। निमित्त बने का आरोप उस पर आता है, अनुकूल होने का आरोप आते हैं तो उसको हम निमित्त कहते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध एक ही समय में होने वाले दो भिन्न भिन्न द्रव्यों के कार्यों में लगता है। हम द्रव्य को निमित्त कहते हैं, परंतु होते ऐसे स्थूल कथन है। अभी जिस बात अभी प्रश्न है ही ना, जैन तत्व मीमांसा पंडित पूर्णचंद्र शास्त्री ने लिखी, उसमें तो इस बात पर बहुत अधिक विवेचन, ये काल प्रत्या सत्य और निमित्त नैमित्तिक संबंध जो एक ही समय में होता है। अगर अपना विशुद्ध लब्धि का प्रकरण चलेगा आगे कि जो अभी हमने जिस सूक्ष्म लब्धि की चर्चा की है, मिथ्यात् और राग द्वेष का जो परिणाम है उसका भी अभी अनुभव, यानी उसका जो शक्ति जो है वो भी मंद 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 होते जा रही है और जिनके मंद कषाय हो रहे शुभभाव रूप परिणाम हो रहे हैं तो उसको यहाँ विशुद्ध लब्धि कहेंगे। हाँ, अभी स्थिति की बात नहीं, अभी तो अनुभव ही घटता है, सूक्ष्म लब्धि में तो अनुभव ही घटता है, यहाँ स्थिति की बात नहीं। स्थिति घटने वो उसका कार्य आगे प्राय लब्धि में आकर हो जाए, स्थिति का घटना। अब यहाँ अप्रशस्त कर्मों का अनुभव घट रहा है, यहाँ तक अभी हम नहीं देखते। अब विशुद्धि लगती है, मंद कषाय होते हैं तो जिनके विशुद्ध परिणाम होने लगते हैं, धर्मानुराग वो परिणाम होते हैं, उसी को यहाँ विशुद्ध लगने कही है। देखो यहाँ हम करेंगे उसकी परिभाषा, हिंदी से होने की पेज है 69 गुजराती है, हाँ विशुद्ध लग्न की परिभाषा है। तो सूक्ष्म लग्न जिसे प्राप्त हो गई है उसके कारण, अभी ये कारण ही यह निमित्त कारण समझना, सच्चा कारण तो जिस द्रव्य की जो पर्याय है वही द्रव्य उसका सच्चा कारण है और वो पर्याय उसका कार्य है। द्रव्य में एक द्रव्य नहीं लगता है कार्य कारण भाव, कारण और कार्य एक ही द्रव्य में होता है, परंतु यहाँ जब हम कारण करते हैं तो पर द्रव्य में निमित्त का ये जो अनुकूलता का आरोप आता है तो निमित्त को भी कारण कहते हैं, ये कथन पद्धति है। तो सूक्ष्म लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है उसके कारण जीव को क्या होता है, बीच वाले छोड़ दीजिए कि जीव को धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, यानी जिसको पहले सूक्ष्म लब्धि प्राप्त हुई है ऐसे जीव को क्या हो रहा है, धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं। तो ऐसे शुभ परिणामों से क्या हो रहा है वहां कभी कुछ वाला पड़ेगा कि सांता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंद होता है, यानी कैसे शुभ परिणाम हो रहे हैं कि सांता वेदनी आदि, आदि में किस किस को लेना, घाती में किसको लेना, घाती तो अप्रशस्त ही है तो अघाती वाले प्रशस्त कौन कौन से है, साता वेदनी शुभ आयु शुभ नाम और उच्च गोत्र, तो साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारण भी ऐसे जो धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम है वो उस जीव को भी हो रहे हैं, यानी जीव को शुभ परिणाम हो रहे हैं। ये तो शास्त्रीय परिभाषा जो ग्रंथ में से ग्रंथ की परिभाषा में याद रखनी ना, इसलिए इतना लंबा लंबा है, परंतु अभी क्या है जीव की पोजिशन क्या है उसको वो मंद दशा में शुभ परिणाम में आया है, उनकी प्राप्ति वह विशुद्ध लगती है। प्राप्ति अगर जीव में वो ऐसे पर्याय प्रकट होती है, वो पर्याय का प्रकट होना वही वो लब्धि, उसको लब्धि का है। प्राप्ति में बाहर जो कुछ उसको प्राप्त होता होगा ये प्राप्ति नहीं है, ये जो जो लब्धि वाले प्रकरण जो है उसमें तो जीव के विशिष्ट पर्याय की बात है ना। तो सूक्ष्म लब्धि में भी जीव के जो मेरी सारी जीव बाहर से आवाज थोड़ा अच्छा बैठना देखो यहाँ ये विशुद्ध व्यक्ति की बात हो रही है। अभी परिभाषा हमने पढ़ी है, ग्रंथों की परिभाषा हमको वैसे ही याद रखती है। अब उसका अर्थ प्रारणा लेने के लिए हमने उसको अलग अलग करके समझा है कि जिसको क्षेत्र व्यक्ति प्राप्त हुई है तो हमने देखा कि अप्रशस्त कर्मों का अनुभव घटता चला जाता है। अब घटता है उन्हें मंद होते होते में आ रहा है तो नैचुरल रूप से हमें जीव के भाव कैसे होते शुभ भाव रूप है तो उसके शुभ भाव के फलस्वरूप क्या हो रहा है तो साता वेद में आदि प्रशस्त कर्म उसको बन रहे हैं। सूक्ष्म लब्धि के फलस्वरूप जीव के मिथ्यात और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं। पहले समय में जितने उससे दूसरे समय में और अधिक मंद हो, तीसरे समय में उससे भी मंद हो, क्योंकि प्रति समय विशुद्धि भी बढ़ रही है, मंदता की ओर वो अग्रसर हो रहा है। प्रति समय मंदता उसकी बढ़ रही है, यानी जिसके इसको बुखार के संबंध में जो तेजी से बढ़ता है वैसे इसकी विशुद्धि तेजी से बढ़ रही है। अभी हम भी कभी कभी शुभ परिणाम करते हैं, कभी कौन से करते हैं, परंतु इतनी कई ये यहाँ जो बात है विशुद्धि लग्न है, वेषणा लग्न है, प्रायोग लग्न है, यहाँ उसकी विशुद्धता की जो बढ़ोतरी है वो अधिक तेजी से हो रहा है। तो मिथ्यात और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। देव दर्शन पूजा स्वाध्याय करना सदाचार युक्त नैतिक जीवन का होना अभक्षण का त्याग व्यसनाधीन न होना अन्याय अनुति न करना आदि भाव उसके सहज उत्पन्न होते हैं। इन शुभ परिणामों के मुख से उसे साता वेद में आदि प्रशस्त कर्मों का बंध होने लगता है। ये तो सी बात है, इसमें कुछ बहुत समझाने योग्य कोई बात नहीं है। अब ये जो यहाँ विशुद्ध लब्धि था ना, तो विशुद्धि शब्द का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो विशुद्धि शब्द शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में आता है। अब हमारा प्रकरण कौन सा है विशुद्धि लब्धि का, तो विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में तथा अन्य सामान्य कथन में जब पहले अकेले विशुद्धि की बात आएगी तब विशुद्धि का अर्थ शुभ परिणाम ही लेना कहे। तो जब हम विशुद्धि लब्धि की बात कर रहे हैं तो यहाँ विशुद्धि का अर्थ क्या है शुभ परिणाम। अब यहाँ वितरात्मा से कुछ लेना लेना नहीं है, कहते हैं ना यहाँ केवल शुभ परिणाम की बात, जीव मंदता के और शुभ परिणाम उसके और इन्हें दशाएं जो है वो घटते चले जाते हैं, मंद मंद होते जाते हैं, शुभ में भी उसकी बढ़ोतरी हो रही है। शुभ परिणाम ही लेना करण लब्धि के समय जब करेंगे, क्योंकि करण लब्धि में भी वहां हम कहेंगे कि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती अंतिम प्रक्रम करण लब्धि का, तब भी हम कहेंगे कि विशुद्धि बढ़ रही है, परंतु करण लब्धि के समय जब कहेंगे कि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती है तो वहां तत्वज्ञान की निर्मलता और श्रद्धा या चारित्र संबंधी निर्मलता के साथ यानी वो बढ़ती है। श्रद्धा और चारित्र की निर्मलता बढ़ती जाती है, तत्वज्ञान निर्मल होता है, निर्मल होता है अभिप्राय में जो विपरीतता वो हटती चली जाती है और तत्व निर्णय के प्रति जीव अग्रसर। तत्व में पहले कुछ उसकी भूल होती थी वो उन्मित हो जाती है और वो तत्व विचार में तल्लीन होता है। तो वहां जो विशुद्धि कहेंगे वो तत्वज्ञान संबंधी निर्मलता समझना, और ऐसा जब होता है श्रद्धा संबंधी उसको निर्मलता हो रही, क्योंकि विपरीतता की यदि उन्हें मिथ्या की मंदता हो रही, कषायन की मंदता हो रही है, तो उसके साथ जो कषायन के उदय स्थान कहते उसको जो तीव्र कषाय थे, जो उदय कषाय है उसको कहते वो विशिष्ट है ना, उसमें भी वेरिएशन अलग अलग जीवन के अलग अलग कषाय होते हैं, तो वो भी कषाय स्थान उसके मंदता की ओर बढ़ते। तो कषाय स्थान में भी हानि होती है, यही क्या है कि पहले जो तीव्रता की कषाय में वो भी मंदता की ओर चलते
जीव के परिणाम कषाय भी मंद 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 होते जाते हैं, तब उसको कहेंगे ये विशुद्धि। यानी जब जीव श्रेणी चलता है तो चारित्र संबंधी जो निर्मलता है उसको विशुद्धि कहेंगे। अब जब विज्ञापन से संबंध प्राप्त करता है और करण लब्धि चलता है तो श्रद्धा संबंधी निर्मलता भी कहेंगे उसके साथ। अकेले श्रद्धा संबंधी उसके साथ कषाय भी मंद हो ही गए तो इसके यानी अलग अलग जगह विशुद्धि का अर्थ अलग अलग होगा। जहां जो जरूरत है वहां उसको समझ कहा चारित्र संबंधी में जनरल बस जो जिसको हम कहते हैं वो भला है, मंदिर में जाता है, दूरदर्शन करता है, अभी तो ये विशुद्धि लब्धि वाला है, अभी देखना लब्धि तक नहीं पहुंचा है। सामान्य बने कि वो उसको श्रद्धा नहीं देगा, देवघरों में भी पूजा करेंगे, हम सदाचार मुक्त रहेंगे, हम मंदिर में जाएंगे, बस इतना यात्रा करेंगे, ये ऐसे जो सुलभ होते हैं। अभी ऐसा ही है कि जिसको अभी देखना नहीं मुझे ऐसा भी देना गया, जिसका ये भला है ऐसा कहीं ना, वो भी अपने को भला मान रहे थे। जब श्रेणी में हम विशुद्धि की बात कहेंगे तो वहां उसके साथ बढ़ती हुई वितरकता की भी तो ये वितरकता के साथ वाली जो है प्रसाद की मंदता उसको विशुद्धि कहेंगे। हाँ यहां वितरकता करण लग्दी में हाँ श्रद्धा संबंधी वो निर्मलता बढ़ रही है उसको लेना, चारित्र की यहाँ बात ही नहीं है। हाँ चारित्र निर्योग्य है उसको हम जो चारित्र की निर्मलता कहते हैं श्रेणी में कहेंगे उसको, चारित्र की निर्मलता बढ़ रही है। अभी चारित्र में जो यथार्थ चारित्र प्राप्त करने जा रहा है वहां हम कहेंगे वो श्रेणी में विशुद्धि बढ़ रही है, उसकी वितरकता बढ़ रही है। यहाँ अभी वितरकता प्राप्त कहाँ हुई है उसको, वितरकता क्या होती है पता नहीं उसको, ये मालूम भी नहीं, फिर भी वो शुभ भाव में आया है, शास्त्र सुनने में आ सकता है, अभी इतने वो मंद दशा हो गया ख्याल है। तो उसके साथ कषाय में उदय स्थान हानि को प्राप्त होता है, यानी कषाय मंद होते जाते हैं उसको विशुद्धि कहते हैं। कहीं कहीं विशुद्धि यानी विशेष शुद्धि पूर्ण वितरकता के अर्थ में भी यह शब्द आता है। अरविंद भगवान पूर्ण विशुद्ध ऐसा भी वहां कहें, वो पूर्ण विशुद्ध यानी पूर्ण वितरक, वहां शुभ भाव का तो कोई सवाल ही नहीं है, है ना, फिर भी उसको विशुद्ध कहेंगे। वहां जहां जो योग्य अर्थ है उसे ठीक तरह से ग्रहण करना, कषाय का उदय पूर्णतः मिटने पर पूर्ण विशुद्ध कहलाता है। अब जीव के कषाय को दो भेदों में विभाजित करते हैं, जो संपूर्ण उसकी कषाय है वो कितने में पता है, असंख्यात लोक प्रमाण। भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न भिन्न जो कषाय की संख्या कितनी है अगर हम देखेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण। कल हमने देखा था अंगुल यानी उंगली की चौड़ाई, उसमें कितने प्रदेश देखे थे हमने, वो तो पल्ले जो है कि जिसके असंख्यात भाग में असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं उस पल्ले का वर्ग करो, वर्ण स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर 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 असंख्यात बार करो तब जाके जो संख्या आती है उसको अंगुल कहते हैं, अंगुल कहो या सूचंगुल कहो। और ऐसे जो पूरा लोकाकाश है उसमें कितने गुणा होगी अंगुल, तो लोकाकाश की संख्या जो प्रदेशों की है वो कितनी बड़ी होगी, यानी उसमें कितने असंख्यात है और उससे भी असंख्यात गुणा कर देना, एक लोग दो लोग करोड़ लोग, ऐसे असंख्यात लोगों में जितनी संख्या होगी प्रदेशों की। तो किसी ने पूछा ऐसे असंख्यात लोग कहाँ होते हैं, असंख्य लोग तो एक ही होता है परंतु एक माप है, गिनती करने का एक माप है, है ना। हाँ उनमें एक लोक में जितने प्रदेश है हमको उस संख्या को देखना है, लोक को नहीं देखना, ख्याल है। जैसे हमने कोई कटोरी भर के वहां उसमें चावल दिए, कितने हजार चावल है और हमको 10,000 की गिनती करनी है तो हम कहेंगे 10 कटोरी, ये कटोरी आपको ख्याल में नहीं आई, पेटी एक क्वेश्चन में कितने आते हैं? लाख आते कि करोड़ आते कि आप पता नहीं हमको, हम खाली ऐसे सुना है। एक लाख के होते हम कहेंगे दस पेटी, तो वो तो काउंटिंग है ना उसकी। वैसे ये हम कहेंगे असंख्यात लोग, तो क्या है अपने वो पैसे की बात आती तो जल्दी समझ में आती। तो यहाँ जो कषाय के टोटल परिणाम है वो असंख्यात लोग प्रमाण, इतने अलग अलग वेरिएशंस उसमें है, तो उसमें सबको हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो उसको कहेंगे संकलेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। लेशा की भाषा में बोलना है तो कपोत, नील और कृष्ण, ये तीन जो लेशा है उसको कहते हैं संकलेश परिणाम। पीत, पद्म और शुक्ल, ये जो शुभ लेशाएं है उसको कहते हैं विशुद्ध परिणाम। अब इसमें भी संकलेश परिणाम है वो बहुभाव है और विशुद्ध परिणाम बहुत अल्प है, फिर भी वो असंख्यात लोक है। ये असंख्यात लोक के भी असंख्यात प्रकार है। सबसे अधिक से अधिक तो कृष्ण रेशा वाले जीव परिणाम अलग अलग प्रकार के, उससे कम नील वाले, उसमें इस तरह से वो विशुद्ध परिणाम कम है, फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण हरेक रेशा के परिणाम होते हैं। तो ऐसे विशुद्ध परिणाम और संकलेश परिणाम ऐसे दो में हम विभाजित कर सकते हैं। तो कषायों के कुल स्थान यानी टोटल वेरिएशन जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, उनमें बहुभाग संकलेश के स्थान है और एक भाग विशुद्धि के स्थान है। हमने एक भाग बहुभाग क्या होता है उसको देखा था, यानी जो कुछ असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है उसको विशिष्ट असंख्यात से डिवाइड करेंगे, उसमें एक भाग अलग निकालेंगे वो विशुद्धि के स्थान और बाकी रिमेनिंग जो है वो संकलेश के स्थान। उनमें क्या भेद वो देखते हैं, यानी संकलेश और विशुद्धि किसे देना, तो साता, स्थिर, शुभ, सुगभ, सुस्वर, आदेय, आदि। आदि में बाकी सब शुभ प्रकृति लेना, जो हमने पहले देखे थे टेबल देखा था ना शुभ प्रकृतियों का, प्रशस्त प्रकृति है जिसको कहते हैं, तो वे प्रशस्त प्रकृति है। साता आदि कहेंगे तो भी सबको गिनना, यानी साता योजना, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, तो आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के कारण भूत कषाय स्थानों को विशुद्धि स्थान कहते हैं। एंड जिन परिणामों के कारण साता आदि ये पुण्य प्रकृतियां बनती है उनको विशुद्ध परिणाम कहते हैं, और जिन प्रकृतियों के जिसके कारण यानी जिन परिणामों के कारण असाता, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूस्वर, अनादेय आदि अशुभ प्रकृतियां यानी अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, तो उसके कारणभूत ऐसे जो कषाय है उनके जो उदय स्थान है, उनके जो उदय के जो वेरिएशन है उसको कहते हैं संकलेश स्थान। स्थान अलग अलग जीवों का अलग अलग है तो उसको स्थान कहने में आता। अत्यंत तीव्र कषाय के अभाव में जो मंद कषाय होती है उसे विशुद्धि कहते हैं। साता वेदनीय के चतुस्थानगत बंध की अपेक्षा, अभी ये जो शुभ प्रकृतियां हैं प्रशस्त प्रकृतियां, प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग हमने चार देखे याद है, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। ये जिन अभी अधिक शुभ परिणाम होंगे तो चारों ही प्रकार का बंध होगा, बराबर। इसको कहते चतुस्थानगत बंध। शुभ परिणाम अधिक है तो चारों ही प्रकार के स्थान बनेंगे। अब जिसको अधिक वाला जो अमृत वाला वो स्थान नहीं बनता है, परंतु मात्र गुड़, खांड और शर्करा इतना ही स्थान बनते हैं, उसके परिणाम थोड़े कम शुभ है ना, शुभ है परंतु कम है, परंतु उसकी अपेक्षा उल्टा देखेंगे तो हम कहेंगे वो संकोच वाले। एक्चुअली कृष्ण लेशा वाले वगैरह अशुभ वाले संकलेश नहीं, परंतु उसकी अपेक्षा वो संकलेश वाले शास्त्र। हाँ, अमृत विचार शास्त्र में तो ऐसा भी आता है कि जो छठे से सातवें गुण स्थान में जाने वाला जीव है उसके परिणाम विशुद्ध है और वो भी सातवें में है परंतु छठे के सम्मुख है, वो संदेश वाला ये कंपेरेटिव है ख्याल है, क्योंकि उसके तो अभी छठे से सातवें में जा रहे तो उसकी विशुद्धि बढ़ रही और सातवें से अभी छठे में आ रहे तो उसके संदेश हो रहे हैं, मतलब है तो एक ही पोजिशन पर कर एक चढ़ने वाला तो अभी छठे गुण स्थान में और उतरने वाला भी सातवें में है, फिर भी चढ़ने वाले के विशुद्ध है और उतरने वाले के संकोच है, ये तो यानी इसको कहते हैं अपेक्षा से बात तुलनात्मक बात, उसकी बात नहीं श्रेणी की अपेक्षा नहीं है, अब पूर्व की अपेक्षा पूर्व परिणामों की अपेक्षा अभी उसके परिणाम कहाँ जा रहे हैं नीचे ढलते हैं तो उसको भी हम संकोच कर सकते, तो जहां जिस अपेक्षा से बात हो उसको वैसे समझना, नहीं तो ऐसा करेंगे सातवें गुणस्थान वाले को संकलेश करना और पहले गुणस्थान वाले को विशुद्धि लब्धि में विशुद्धि करना, ये सब उल्टा पुल्टा क्या चल रहा है, क्या है ना अपेक्षा सही बात हो गई, तो इसलिए ऐसा कहा है कि जिसको चारों स्थान बन रहे शुभ प्रकृतियों के उसके अपेक्षा से जिसको तीन स्थान का बंधन हो रहा है उसके परिणाम संकलेश वाले हो, इसको संक्लिष्ट तर्क कहना, वर्धमान ने बढ़ते हुए कषाय को संकलेश और हीयमान ने घटते हुए कषाय को विशुद्ध कहना भी ठीक नहीं है, कोई कहेंगे ना जब जब हम कषाय बढ़ेंगे तो संकलेश कहेंगे जब जब कषाय कम होंगे तो हम विशुद्ध कहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने देखा था संकलेश के तो असंख्यात बहुमान इतने परिणाम है और विशुद्धि के स्थान है वो एक बार प्रमाण, बढ़ते हुए को संकलेश और कम होते हुए को विशुद्धि कहेंगे तो वो वेरिएशन उसमें वो प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा, इसलिए ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। वहां प्रश्न पूछते हैं कि बढ़ती हुई कषाय को संकलेश और हीन होती हुई कषाय को विशुद्ध क्यों नहीं कहते, यानी तीव्र कषाय हुए तो संकलेश और मंद हुए तो विशुद्धि, ऐसा क्यों नहीं कह सकते, तो वैसा करने पर संकलेश स्थानों और विशुद्ध स्थानों की संख्या में समान होने का प्रसंग आएगा, तो हमने देखा था स्थान के समान नहीं है, संकलेश के स्थान दो भाग है और विशुद्धि के स्थान एक भाग है, अब ये अपने विषय से थोड़ा हटकर है परंतु संकलेश विशुद्धि जब जब बड़े ग्रंथों में हम पढ़ेंगे तो ये उसमें तो इससे भी और गहरा उसमें विवेचन आएगा कि वे हम जितना ही अपने लिए पर्याप्त है इतना ही विशुद्धि और संकलेश के बारे में पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सी लाइन देगी, हाँ कषायों की वृद्धि केवल असाता के बंध का कारण नहीं है, देखो क्या ध्यान दें, क्योंकि कषायों की वृद्धि के काल में भी साता का भी बंध पाया जाता है, अब ऐसे हम किसी शुभ लेशा की बात करेंगे, कोई शुक्ल लेशा वाला है तो वो तो है तो विशुद्ध परिणाम, अब शुक्ल लेशा वाले में भी वेरिएशन थे ना,
यहाँ संकलेश और विशुद्ध के दो बताए गए, इसमें जो मिश्रण है तीन लेशा है पद्म लेशा है नीत लेशा और यहाँ कठोर लेशा है नीत लेशा है कृष्ण लेशा, यहाँ कृष्ण लेशा है अधिकीर्ण कथा है और यहाँ मंडला की ओर, यहाँ विशुद्धि में विशुद्धि बढ़ती नहीं है, अब कोई जो शुक्ल दशा वाला जो है उसकी विशुद्धि कम होगी, यानी कषाय बढ़ेगा उसकी, यहाँ कषाय सबसे मंद है और ये कषाय उसके कारण विशुद्धि कम होने में कषाय ज्यादा है, फिर भी वो ज्यादा बन रहा है,
शुक्ल रेशा है उस साता पत्र की बांध रही है, यानी उसमें कषाय घटने पर भी वो साता बांध रहा है। ऐसे हम ऐसा भी नियम नहीं बता सकते कि कषाय घटने पर उसको असाता बनता है, ऐसा भी नहीं है। कषाय घटने पर ही असाता बनने की ऐसा नियम नहीं बता सकते, क्योंकि शुक्ल रेशा में ही कषायों में गड़बड़ होगी, घट होगी या बढ़ना भी होगा, फिर भी उसको वहां पर साता का ही बंध होगा। है तो शुभ परिणाम, शुभ परिणाम हमने कब हीन प्रकार के शुभ हो गए, उच्च प्रकार के शुभ हो गए। देखो साता ही बंध रहे, हाँ पॉलिसी बदल गई और उसके जो अनुभव है उसमें भी वो रेशा होगा, परंतु साता से ही होकर असाता बनने का तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसी तरह कथा की हानि के काल में भी असाता का बंध पाया जाता है, जैसे कृष्ण लेशा के बहुत तीव्र कषाय थे, अभी वो हानि हो गई, फिर भी अभी किसी जो को असाता ही बन रहा है, ऐसी बात है। तो कौन से कर्म बनते हैं तो उसका वेरिएशन ऐसे हो सकता है इसके। तो यहाँ अपने विशुद्धि लब्धि का देखने के मुख्य क्या है कि जिन परिणामों के कारण अभी उसको साता का बंध हो रहा है, साता आदि शुभ प्रकृतियों का बंध होता है, ऐसे परिणामों जिस काल में होने लगते हैं उसको विशुद्धि लब्धि कहा है। ये जो अभी नहीं है ना संदेश के क्षण और विशुद्ध के स्थान, ये तो सामान्य कथन है, इन जनरल ये स्टेटमेंट है। अभी विशुद्धि के काल में किसको विशुद्धि कहना और किसको नहीं, इसकी बात अब आएगी। देखो नीचे का पैराग्राफ, यह तो सामान्य संसार अवस्था की बात हुई, परंतु सम्यक बोधपत्ति के काल में यानी विशुद्धि लब्धि के काल में या बाद में भी जब समय को उत्पन्न होता है उस काल में हानि को प्राप्त होने वाले कषाय स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं। यानी जब यहाँ उत्तम समय का प्रकरण चल रहा है, अब कोई तो कृष्ण रेशा वाला सातवें नरक का नारकी है, उसकी तो लेखक स्वयं होकर वो शुभ रेशा तो होने वाली नहीं है, शुभ की बात तो छोड़ो, कृष्ण से वो नींद में ही नहीं आने वाला, तो इसको विशुद्धि किसको कहना। तो पूर्व में अभी तीव्र संकेत परिणाम थे, अभी वो मंद की ओर आ तीव्र कषाय थे, वहां भी उसकी कंपैरिजन में उसके पूर्व परिणामों से अभी के परिणाम उसके मंदता की ओर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे विशुद्ध लगते। नहीं तो क्योंकि कोई तो जीव शुक्ल लेशा वाला है नौवे ग्रह का मिथ्या दृष्टि, कोई किलियन का मनुष्य है मिथ्या दृष्टि, और कोई सातवें नरक का नारक है मिथ्या दृष्टि, सब में वेरिएशन में कथा में कितने वेरिएशन है। तो विशुद्धि लब्धि तो होती ही है, उसके बिना तो आगे तो देखना लब्धि प्रायोग लब्धि नहीं होगी। तो इन जीवों को भी जो विशुद्धि लब्धि है तो अपने अपने पूर्व परिणामों से अगले अगले समय के परिणाम मंद मंद होते जाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि। ये विशुद्धि का यह अर्थ हमें यह नहीं लेना, जनरल जब विशुद्धि कहेंगे तो शुभ परिणाम विशुद्धि, यहाँ में जो है अपने अपने पूर्व परिणामों से भले वो कृष्ण लेशा भी क्यों न हो। बहुत उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं कृष्ण लेशा में भी, संकलेश घटते जाएगी, संकलेश तम था जिससे संकलेश स्तर हुआ और फिर संकलेश हुआ यानी वो घटता गया, तो कषायों की हानि हुई वहां, अपने अपने पूर्व परिणामों से कषायों की हानि होना उसको यहाँ विशुद्धि लगती
है।
वर्तमान के जो परिणाम है वो कैसे है, अभी पूर्व परिणाम उनसे मंद हो गए एक आए। हाँ
ये कब? ये पांच लब्धि वाले में, जो पांच लब्धि का प्रकरण है उसमें अकेले मंदता होने से नहीं। ये मंदता कैसी हो रही है? तो प्रति समय उसका अनुभव अनंत गुणा घटता है। ये अनंत गुणा घटना है ना सूक्ष्म लब्धि में, तो उसकी विशुद्धि भी यदि उसकी जो मंदता है तीव्रता से वो मंदता की ओर बढ़े, उसके कारण इस काल में ऐसी बातें होती है। देखो वहां वैसा कहना ठीक है, यानी अभी ये विशुद्धि प्रकरण चल रहा है, सम्यक उत्पत्ति का काल है, तो यहाँ ऐसा ही कहेंगे हम कि उसके परिणाम विशुद्ध है, क्योंकि दर्शन और चारित्र मुखी सपना और उपशमना ने, यानी जब उसका क्षय होता है और जब अभी हम जो उत्सम समित्व की बात कर रहे हैं उस समय में, पूर्व समय में उदय को प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकों की अपेक्षा, यानी अभी हमने देखा था पूर्व में कौन से अनुभाग स्पर्धकों का उदय था, तीव्र वाले, उसकी अपेक्षा अनंत गुणाहीन अनुभाग स्पर्धकों का उदय होता है। जिन कषायों का उदय पूर्व में तीव्र अनुभाग वाला था, अभी वो अनंत गुणाहीन होता है। तो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आना, यही यहाँ विशुद्धि लब्धि का अर्थ ले। तो ऐसा जो उदय होता है तो उसके कारण जो कषायों के स्थान होते हैं उन्हीं को विशुद्धपना स्वीकार किया गया। कब? जब जब ये उपशमना की और क्षय की बात आएगी उस काल। अन्यथा जब जनरल स्टेटमेंट होगा कि जीव के परिणाम विशुद्ध है, तो वहां पर ऐसा ही समझना कि वो जो शुभ परिणाम है उससे साता का आदि बंद हो रहा। ऐसा नहीं देगा, छह छह रेशा में कषायन की मंदता होगी तो वहां विशुद्धि लब्धि हो सकती है, ऐसा कर रहे। इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि नरक गति में कृष्णादि तीन असुर रेशा होने पर भी वहां विशुद्धि लब्धि कही है। देखो नरक में तो कृष्ण रेशा में भी सम्यक तो होगा, परंतु मनुष्य और तिरियंचों को कृष्ण नील और कपोट लेशा वालों को ये विशुद्धि लब्धि होगी नहीं है ना, क्योंकि वहां की वो अपनी अपनी लेशा निश्चित है, वहां तो लेशा कुछ बदलने वाली नहीं है। परंतु मनुष्य तो चलो हम भी कृष्ण लेशा में समय को प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके तो पीठ पद्म और शुक्ल लेशा में ही समय को की प्राप्ति होगी, तीन शुभ लेशा मनुष्य और तिरंजों के लिए नियम है। स्वर्गों में भी अपने अपने स्वर्ग की अलग अलग लेशा होती है, जैसे धर्मत्री का पहले दूसरे वाले स्वर्गों में तो पीठ लेशा होती है, ऊपर वाले स्वर्गों में तो पद्म होती है, और ग्रेवेट और वहां ऊपर ऊपर के उसमें तो शुक्ल लेशा होती है। देखो तो अभी तो इस विशुद्धि और लब्धि वाले जीव को देशना अर्थात मोक्ष मार्ग के स्वरूप संबंधी उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उसकी प्राप्ति तो देशना लब्धि के प्रकरण में कहेंगे। अभी तो केवल पुण्य बनने के कारण धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम हो रहे हैं, अभी ना उपदेश सुना है, ना सच्चा पहचाना है, ना क्या है कुछ मालूम नहीं। कितने ही जीव इतने मात्र से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करते हैं, मानवता की भावना से दूसरों को मदद करना, सदाचार से रहना, देव दर्शन पूजन यात्रा दया दान आदि करना, इसी में वे जीवन की सफलता मानते हैं। अभी जीवों को तत्वज्ञान का पता नहीं है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान नहीं है। कोई जीव धर्मानुराग वश कहीं प्रवचन शास्त्र सुनने जाता भी है, मगर सच्चा उद्देश्य इसे प्राप्त नहीं हुआ। जो कान्ही स्वामी कहा करते थे कि यह जीव बीवी बाल बच्चे व्यापार धंधा आदि में जो बड़ी मुश्किल से एकाध घंटा शास्त्र सुनने जाता है, तो कुगुरु उसे लूट लेता है। 24 घंटा पाप करे थे, 23 घंटे पाप करके एक घंटा मान मान वो निकालेगा और कहीं सुनने चला जाता है और किसी कुगुरु के चक्कर में आ गया और कुगुरु उसे लूट लेता है, यानी क्या उसको सच्चा उद्देश्य अभी प्राप्त नहीं होता। तो विचार करो, अनादिकाल से हम जन्म ग्रहण करते आए हैं, उसमें अनंत बार
कभी विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति बांधी तो कभी संकलेश परिणामों से पाप प्रकृति बांधी थी, परंतु बंधन में से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। इससे इसमें से छूटने का मार्ग यानी मोक्ष मार्ग और उसका उपदेश जिनेन्द्र भगवान ने बताया है वही यथार्थ है, सत्य है। तो सभी संप्रदाय के लोग कहते कि हम आपको मुक्ति दिलाए, कोई ऐसा नहीं कहते कि हम नरक में ले जाएंगे। सब वैकुंठ में स्वर्ग में और मोक्ष में जाने की बात करते हैं, परंतु सच्चा जो मोक्ष का मार्ग है वैसे कोई अलग अलग आने का मार्ग नहीं है। कोई एरोप्लेन से जाएगा, कोई रेल से जाएगा, कोई सड़क से जाएगा, क्यों यानी कोई व्यवहार मार्ग से जाएगा और कोई निश्चय से जाएगा, ऐसे दो मार्ग है ही, एकमात्र मार्ग है। और वही जिनेन्द्र भगवान ने जो सच्चा मार्ग बताया है वही एकमेव मार्ग है, और उसी मार्ग से जीव चलेगा, उसका उपदेश सुनेगा तो उसका मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। ये बिल्कुल पहले में पहले कंडीशन ये है कि जिनेन्द्र भगवान ने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग को जो फॉलो करेगा, उसी मार्ग पर चलेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बंधन में से छूटने का मार्ग आज हमें उपलब्ध है ना। हम तो महाभाग्यवान है, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय है, विचार करने की शक्ति है, और हमें ये मूल मार्ग उपलब्ध हुआ। उसके मूल कर्ता यानी मूल उपदेशक तीर्थंकर भगवान है, उसकी उनकी देवगनी में यह उपदेश सहज रीति से बताया जाता है, और उसके अनुसार गणधर आचार्य 12 अंगों की रचना करते हैं। यानी जो शास्त्र की रचना है जो गणधर हुआ तो ऐसे कोई लिखता नहीं हो, ना भगवान लिखते ना गणधर लिखते। महावीर भगवान ने कितने शास्त्र लिखे? 48 लिखे, लिख के रखे क्या? ना गणधर आचार्य लिखते हैं, वे तो उसकी रचना है नहीं, उनके तो इतना ज्ञान का क्षोभ है कि एक अंतर्मुहूर्त में 12 अंगों की रचना करते हैं। 12 अंगों का स्वरूप जानेंगे तो चक्कर आएगी, इतना उसमें इसका यानी उसको मान आपने सीखा ना ज्ञान मार्ग नाम तो शुद्ध ज्ञान के वेद। ये बहन ऐसी है कि कुछ कर्णानियोग के व्याख्यान सुने वे और उनके मिस्टर अश्विन भाई और ये प्रेरणा वेद, द्रव्य गुण पर्याय की कोई मालूमात नहीं, क्या होता है कुछ पता नहीं, और मातृभूमि वालों ने मेरे कुछ व्याख्यान आयोजित किए थे तो कर्णानियोग का पहले भी पहले सुना, तो उनको ऐसा लगा नहीं हमने बहुत लोगों को सुना है बॉम्बे में, ये जो कुछ बात हो रही है वो बहुत सत्य बात हम सुन रहे हैं। तो उनको ऐसे कि कर्णानियोग से क्लास में आकर बैठने लगे सुबह रोज 1.5 घंटा, अरे वहां तो इतना प्रकरण गहन चल रहा था कि मुझे ही डर लगा कि ये आए है क्या करे, परंतु एक हमारा ये कि किसी को नहीं कहना, आओ समझो 4 दिन के बाद समझेंगे। तो सचमुच वो ज्ञान मार्गना वो बाद में लेशा मार्गना इतना उसमें इन्हें बिल्कुल अभी तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल फूल चर्चा करे उसमें तो इतनी सूक्ष्म गहन चर्चा करती है, फिर भी वो टिके रहे और 2-2.5 साल से लगातार आते हैं, और अब जाके वो नियम सार आदि ग्रंथ भी पढ़ने लगे और द्रव्य गुण पर्याय सब बातें अभी उन्होंने ग्रहण कर ली। यानी कर्णानियोग के टॉप में ये आदि करे समग्र पाया कहते ना, तो वहां से शुरू किया। तो किसी जीव को कौन सा अनुयोग पहले रुचेगा और कहां से उसकी बिगिनिंग होगी, शुरुआत होगी, वो कोई नहीं सकते है ना। तो ये बात हो रही है कि ये जो 12 अंगों की रचना करते हैं गंधर्व, यानी वो तुम वहां तो एक पाठी होते थे ना, तो उन्होंने बताया तो अगले वाले आचार्य ने ग्रहण कर दिया, एक बार सुना एक पाठी ने एक बार सुनते हुए उनका याद हो जाता। तो फिर ऐसी जो परंपरा चली बहुत साल तक, और 500 वर्ष के बाद जाकर जब ये तो सारे 12 अंगों का तो बहुत कुछ राहत हो गया, उसमें से तो बहुत कुछ ज्ञान लुप्त हो गया, क्योंकि डे बाय डे तो ये तो बुद्धि की तो हीनता ही हो रही है हमारी, हमें लगता है हमने बहुत तरक्की की और बहुत कुछ अभी तो कंप्यूटर निकाला है, पहले तो नहीं था, हमारे बच्चे कैलकुलेटर के बिना गणित नहीं कर सकते, तो ये तरक्की हुई क्या हुआ?
जो कार्य सभी मन के द्वारा होता था वो सारा हम अभी आज हमको बाहर का ये कुछ कंप्यूटर है वो दूसरा एक मन दिखा दिया हमने। ये सारे ये मेमोरी है ये बात ये क्या है, जैसे मन जो निमित्त है वो ज्ञान ही जानता है, परंतु द्रव्य मन ये भी पौद्गलिक रचना है और आपका कंप्यूटर भी पौद्गलिक रचना है। तो मन के द्वारा जो जो कार्य होता था तभी वो तो हम दिया गए शिथिल होते गए तो बाहर का कुछ ला के रख दिया तो हमें लगता है हमने बहुत तरक्की की, पहले इतनी नहीं थी और आप कर दी। पहले तो लिखने की जरूरत नहीं होती थी, एक बार सुना और याद हो जाता था, फिर भी काल के क्रम से वो भी उसका नाश होता गया ज्ञान का भी, और बहुत अल्प ज्ञान बचा तब जाके दर्शनाचार्य को ऐसा भाव आया कि नहीं अभी तो ज्ञान लुप्त हो जाएगा तो इसको लिपिबद्ध कराए लिख के रख। तो फिर आगे की तो कथा मालूम है आपको, तो शतकुंडागम की वगैरह रचना होती है और जो ज्ञान अभी उपलब्ध है लिखा है तो हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी। अब वो भी नहीं समझते थे तो नैमित्तिक सिद्धांत चक्रवर्ती ने उसमें से भी माल निकालकर गोमटसार की रचना की। वो भी नहीं समझने लगे तो टोडरमल जी ने वो मुंडारी भाषा में उत्तर टीका लिखी। टोडरमल जी की कमाल तो इतनी है कि ये साउथ में कन्नड़ लिपि में, लिपि कन्नड़ और भाषा संस्कृत, गोमटसार की जो टीका है गोमटसार लिखा था नैमित्तिक सिद्धांत चक्रवर्ती और उनके माधवचंद्र आदि शिष्य थे और अन्य भी बहुत सारे उनके जो केशव वर्णी ऐसे कोई हो गए शिष्य, उन्होंने टीका लिखी संस्कृत में परंतु लिखी कन्नड़। तो टोडरमल जी ने कन्नड़ लिपि में वो संस्कृत जाना और उसकी टीका हिंदी में लिखी, हिंदी में उनकी ढूंढारी भाषा जो आज हमें उपलब्ध है। और इतनी बहुत इन्हें इतना विवेचन किया, इतना सब स्पष्ट रीति से समझाया है कि वो पढ़ते वो सारा ज्ञान हमें हो जाता है, यानी इनकी मेहरबानी इतनी है अपने ऊपर। तो ये जो है कि गंधर्व आचार्यों ने 12 अंगों की रचना की और आचार्यों की परंपरा से हमें आज उपलब्ध है, तो हमें जो आज उपलब्ध है वो भगवान महावीर का उपदेश, किसी आचार्य का नहीं। ग्रंथ तो थे, कुमकुंदाचार्य ने भी ग्रंथ लिखे, परंतु वो ग्रंथ हमारे कपाटों में थे और हम उनकी पूजा भी करते थे, उनका ग्रंथ का अर्थ बताने वाले स्वामी जी आ तो उन्होंने उसका अर्थ समझा कर हमें बवल लो अभी इतना ही मुंह में डाला भी निगलने का ही बाकी है। तो हमारे भाग्य से पूरी जिनवानी का जो मर्म है जो हार्द है जो सम्यक को प्राप्त करने के लिए जो जिनको कार्यकारी है वो पूरा अपने हाथ में आ गया। तो ये जो मूल उपदेश है सर्वज्ञ भगवान का है, सर्वज्ञ उन्हीं कहते वो जो तीन लोग तीन काल है अलोक सहित तीन लोग और तीन काल, जितने द्रव्यगुण पड़े हैं वो सभी को एक समय में एक साथ जानते हैं। तो सबको प्रत्यक्ष जानकर उसका उपदेश उन्होंने दिया है और जो पर्याय उन्होंने प्रकट की है वो कैसे प्रकट की उसका उपदेश दिया। ऐसा नहीं कि वो खाली बातें की और जाके अभी बाद में वो कुरुशास्त्र है ऐसी भी बात नहीं। तो ये जो मूल उपदेश सर्वज्ञ भगवान का है वही मूल उपदेश हमें आचार्यों के द्वारा अभी प्राप्त है। तो ये जो द्वादशांग द्रव्य श्रुत है वो आचार्यों की परंपरा से यह मार्ग आज तक चलते आया है। अब इस मार्ग का उपदेश सुनने की जिज्ञासा और बुद्धि होना और यह सत्य उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त होने रूप महाभाग्य महान पुण्य उसी को होगा जिसके क्षोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त होती है ना। ये महान, हम तो पुण्य तो पैसे नहीं गिनते हैं, जितना अधिक पैसे वाला उतना अधिक पुण्यवान से है ना। तो किसी ने पूछा ऐसा कौन सा पुण्य है कि जिसके कारण पैसा मिलता है ताकि हम वही पुण्य करें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो ये असंख्यात लोक प्रमाण भाव है और असंख्यात लोक प्रमाण कर्म भी है। अब यथायोग्य जिस किसी से पुण्य बनता होगा, पैसा भी आता होगा या नहीं भी आता होगा, पैसा आता है तो परमाणु की अपनी योग्यता से आता है, उसमें
निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों का बनता भी है, परंतु वो हम उसमें नहीं उलझना है ना। ये संयोग आते और जाते रहेंगे तो कर्म का उसमें निमित्तपना बनेगा, परंतु वो अपने से भिन्न है और उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पैसा आया या नहीं आया तो हम कुछ बढ़ गए या हीन हो गए की बिल्कुल बात नहीं है। शरीर अच्छा है या बुरा है, अच्छा बुरा क्या होता है, कौन सा पुद्गल अच्छा है कौन सा बुरा है, छह द्रव्यों में अच्छा द्रव्य कौन सा है और बुरा द्रव्य कौन सा है, तो कुछ है नहीं, अपनी कल्पना की बातें है। तो ये जो मूल उपदेश है ना कि जो महान पुण्य के बिना, ऐसा जो मूल उपदेश है जो सर्वज्ञ के द्वारा बताया है और अभी तक चलते आया है, उस मूल मार्ग का उपदेश की प्राप्ति होना ये भी बहुत दुर्लभ बात है। तो जिसको महान पुण्य का उदय हुआ है उसी को ये ऐसी बात सुनने को मिली। विशुद्धि लब्धि बिना जीव जिनेन्द्र कभी उपदेश सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। कोई जबरदस्ती सुनाने लगे तो भी उसको उरुस्ता नहीं है, उसका मन वहां से हट जाता है। जिस प्रकार पत्थर पर बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है, उगता नहीं, उसके लिए मृदु मिट्टी में बोना आवश्यक है, उसी प्रकार जिनवानी श्रवण का सौभाग्य और सुनकर समझने का सौभाग्य, उसको भी सौभाग्य का, क्योंकि इतने विवेक होना, इतनी बुद्धि होना, ये भी है ना उपशोक्षम लब्धि में वो भी आ जाता है। तो एक तो सुनने का सौभाग्य और समझने का सौभाग्य उसी को होगा जिसके परिणाम मृदु होंगे, विशुद्ध होंगे। देखो तीव्र कषाय में तो ये तो हम कहते हैं जीव अंधा हो जाता है, क्रोध से अंधा हो जाता है कि सामने वाले का खून भी कर दे, तो क्या उसको मालूम नहीं है कि ये खून की सजा होगी और उसको कारावास में डालेगी, फांसी होगी। पर तो इतना क्रोधावेश होता है, तीव्र कषाय होते हैं, तो उसका ज्ञान काम नहीं करता उसका। वैसे जो तीव्र कषाय होगा उसका ज्ञान ऐसा विवेक नहीं कर सकता। तो जो कषाय की मंदता में आया है, अब वो जिनवानी सुनता है तो समझने का और वो ग्रहण करने का सारा अवसर उसको मिल जाता है। दूसरी एक बात है, जिसके महान पुण्य का उदय होगा उसे ही महान दुर्लभ ऐसे जिनवानी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा, अन्यथा यह बात कानों में पड़ना भी महान दुर्लभ बात है। जैसे मनुष्य भोग कितना दुर्लभ है इसकी बात हमने बहुत बार की, तो मनुष्य तो हुए जितना दुर्लभ में दुर्लभ मनुष्य वो पाया, परंतु हम अभी पृथ्वी के जीवन की बात करेंगे तो कितने सारे मनुष्य, अब ये मनुष्य इतने हैं तो कितने लोगों के कान में ये जिनवानी पड़ रही, इतने मनुष्य में जैन कितने, वो जैन है उसमें भी वो जिनवानी सुनने वाले कितने, जिनवानी है वो जिनवानी पूजा वाले वो नहीं जिनवानी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी और वो सच्चा तत्व, क्योंकि जिनवानी के नाम पर भी अन्य अनेक बातें चलती रहती समाज में, तो हर प्रकार के जीव। फिर आदिनाथ भगवान के काल में तो आज का काल तो कितना निकृष्ट, तो ये तो जो सच्चा मार्ग और उसके साथ पाखंड मार्ग तो हमेशा चलता रहेगा, उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो सच्चा मार्ग मिल रहा है तो इधर उधर देखने के बदले उस मार्ग पर हम चले आगे, वही हमारे लिए कार्यकारी। लोग तो पुण्य का फल संपत्ति और घर बार प्राप्त होने मात्र को कहते हैं, उसे तो हर जीव ने अनंत बार पाया और छोड़ा। हमने सभी प्रकार के भाव किए, वो भाव परावर्तन में अलग अलग प्रकार के बहुत भाव किए, तो उच्च में उच्च प्रकार का शुभ भाव जो मिथ्या तो अवस्था में पॉसिबल है ऐसा भी किया, और उसके फलस्वरूप बहुत सारी संपत्ति भी मिल गई। कितनी बार, अनंत बार मिली भी और छोड़ी भी, परंतु उस पुण्य को हम भला कैसे कह सकते हैं जो संसार में भटकाता रहे है? जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है, उसके धर्मानुराग रूप मंद दशाएं होते हैं, उसकी इसी पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है। ये पूरा ही मोक्ष मार्ग सहज है। देखो यहाँ निमित्त की भी सहज उपलब्धि होती है, ऐसा लिखा, जिसकी देशना लब्धि की पात्रता है उसको देशना रूप निमित्त भी सहज उपलब्ध होता है। तो उसके लिए आवश्यकता क्या है, उसकी अपनी पात्रता। उसको अंदर से ऐसी तीव्रता, तीव्र रुचि जागृत होती है कि समझाने वाला उसको मिलेगा ही सामने, सामने वाला समझाता है, इसलिए उसको वहाँ तत्व समझ में आते, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान की जो पर्याय है वो अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, उपादान से कार्य होता है, तब सामने कोई निमित्त उसे सहज रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि हम तो देखते हैं किसी किसी को कैसे कहाँ से निमित्त मिल जाते हैं, कोई हम ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कौन से पुस्तक पढ़ने जा रहा, सुनो तो सही, देखो तो सही, और ऐसे कितने को मिल जाता है, होता है नहीं सर। और कहीं कोई बाय चांस आ जाता है, उसको ये सुनने को मिलता है, यानी कौन से जीव की पात्रता, वो सुनने को मिला वो तो बताता है कि ये जीव की पात्रता है, ऐसा वो पात्रता है कि नहीं वो बाहर से पहचाना नहीं जाता। तो ये जो तीव्र रुचि पूर्वक सुनता है ना, आपका प्रश्न था ना, ये हमको डर लगता है, भव्य अभव्य की बातें सुनकर हमको डर लगता है, तो हम अभव्य होंगे तो ऐसी डर की, ऐसे निगेटिव थिंकिंग करना नहीं कभी। यहाँ लिखा है ना वो तत्प्रति प्रीति चित्त है कि नहीं है, यहाँ देखो देखो वहां लिखा, पद्मानंदी आचार्य ने लिखा है, क्या लिखा है ऊपर, तत्प्रति प्रीति चित्त येन वार्ता श्रुता निश्चितम स भवे भव्य भावी निर्वाण भाजन। यानी वो जो रुचिपूर्वक, अत्यंत तीव्र रुचिपूर्वक आत्मा की, यानी अपनी हो, आत्मा यानी अन्य आत्मा की बात नहीं, आत्मा की बात सुनता है, रुचिपूर्वक समझना चाहता है, वो क्या दर्शाता है कि ये निकट भवे जीव है, और निकट में ही वो मोक्ष जाने वाला है, बिल्कुल ये गारंटी के साथ बात है। वो तो ऐसे कुछ लोग आए सुने इसलिए नहीं लिखा है, वो है ना, ये सत्य बात है। तो जिस जीव को ऐसी तीव्र रुचि होती है, तीव्र जिज्ञासा होती है, उसको देशना रूप निमित्त भी सहज ही उपलब्ध होता है। अब ये देशना क्या है और देशना लब्धि क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे दोपहर में। अभी कुछ प्रश्न है तो दो मिनट बाकी है। हाँ, देखो यानी ये तीव्र रुचि ने बाहर से कुछ उसके दिखे ऐसी बात नहीं है, उसको उपदेश मिला है वो सहज है, परंतु फिर भी वो उपदेश सुनने के वहाँ कुछ उसके है ना, उपदेश सुनने बैठा है वो, क्यों सुनने बैठा है, अन्यत्र क्यों नहीं भटक गया, बिल्कुल बाय चांस उसको मिला है। जैसे हमारे साथ कोई हमारे फ्रेंड आए हैं या कोई अपना नौकर भी आया है और वो बाहर बैठे बैठे सुन रहा है, तो उसको सहज में मिला है, पर सहज में मिला है परंतु इतरत्र उसका लक्ष्य नहीं, उसका उपयोग यहाँ है सुनने में लगा है, वो क्यों, ऐसे डायरेक्ट उसको बहुत तीव्र रुचि है और मुझे समझना है और मुझे किसी को ढूंढना है, ये तीव्र रुचि ने बाहर उसको कुछ उसका आपको पता नहीं लगेगा इसको ये ऐसी तीव्र रुचि है, परंतु उसको ऐसा सुनने को अवसर मिला है, वो अवसर उसी को मिलेगा कि जिसको ये ऐसे पुण्य हो रहे। हाँ, सुन लेते हैं तो सुन लेते हैं, परंतु उसको ये अंदर में वो रुचि उसकी पड़ी है, वो व्यक्त इसी बाहर नहीं है, व्यक्त नहीं है, परंतु उस बच्चे को क्यों मिला सुनने को, आपके बच्चे को क्यों मिला, दूसरे को क्यों नहीं मिला, उस जीव की ऐसी योग्यता है कि नहीं है, उस जीव ने आपके घर में क्यों जन्म लिया कि जिसको सुनना मिले, उसने अन्यत्र क्यों नहीं जन्म लिया, वो जीव की पात्रता बता दो कि ऐसे जीव को ऐसे ही संयोग मिल जाए। यानी हमारे घर में वैसे पैदा हुए तो वो पात्रता उसकी है कि नहीं है। अब जो कोई ऐसा पात्र है कि जन्मा तो अन्यत्र में, अब गुरुदेव की बात करो, अन्य संप्रदाय में जन्म और समय सार किसी ने हाथ में दे दिया, अंदर तीव्र रुचि थी तो सहज में ऐसा ग्रंथ की प्राप्ति हो गई, और पूर्व संसार से और उसके अर्थ भी उनके ख्याल में आए, ख्याल है ना, अकेले ख्याल में नहीं, दो औरों को भी बता दिया। तो किस जीव की कैसे, अभी राजसमय की बात, वो तो वैष्णव कुल में थे, फिर वो श्वेतांबर की मान्यता में आ गए और फिर दिगंबर उनके ग्रंथ हाथ में आ गए, कौन से जीव को, हमें लगता है वो सहज प्राप्त होता है तो सहज ही है, निमित्त जो है वो सहज ही होते, उसी को निमित्त कहते,
तो बाहरी बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना पड़े उसके लिए, ऐसी बात है। पुरुषार्थ तो अपने लिए होता है, निमित्त को लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं होता। निमित्त जुटाए नहीं जाते और ना ही निमित्त हटाए जाते। जीव की जैसी जो पात्रता है उसके अनुरूप उसको निमित्त सहज प्राप्त होते हैं। ये सहजता ही है, हर एक लब्धि में ये सहजता लगाना, सम्यक को प्राप्त होने में भी उस समय भी वो सहजता सब ले लेना। प्राय लब्धि में, करण लब्धि में, हर एक में जो 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 कोई कार्य है, जो जो पर्याय है, अब हमारे अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है, तो हम करेंगे तो होगी, करेंगे नहीं उसमें क्या है, हमारा राग आया, हमारी इच्छा है क्या, चारित्र गुण की विभाव पर्याय, तो चारित्र गुण के विभाव पर्याय से हमको निमित्त मिले, हम ज्ञान, हमारी ज्ञान बढ़ जाए, ऐसा कैसा होगा कि जिसको हम पुरुषार्थ करते कहते हैं, समझते हैं, वो तो हम इच्छा, हमने इच्छा से किया, इसको हम पुरुषार्थ समझते हैं, वैसा पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो हर गुण के पर्याय में चल रहा है और ये सहज हो रहा है, ये पूरा मोक्ष मार्ग ही सहज है, और वो सहजता का स्वीकार होना यही पुरुषार्थ है।
जानी ते ज्ञान ते